ब्रजानंदन ब्रजचंदन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रजचंदन
वंशाकल्पतरुभ्यश्च
कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयो देवेष्टभ्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 44। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंध अध्याय 8 श्लोक 44। सद्यः नष्टः स्मृति गोपी सा आरोप्य आरोहम् आत्मजम् प्रवृद्ध स्नेहकलिलम् हृदया आसीत् यथा पुरा। सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारूप्यारोहमात्मजम् प्रवृद्ध स्नेहकलिल हृदयासित यथा पुरा। सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारूप्यारोहमात्मजम् प्रवृद्ध स्नेहकलिल हृदयासित यथा पुरा। सद्यो नष्टः स्मृतिर्गोपी सारोप्यारोहमात्मजम् प्रवृद्ध स्नेहकलिलम् हृदयासित यथा पुरा। आरोप्यारोहमात्मजम् सद्यो नष्टः स्मृतिर्गोपि आत्मजम् सारे दार्शनिक चिंतनों के बाद माता यशोदा ने भगवान की शरण ग्रहण की। नष्ट स्मृति कृष्ण के मुंह के भीतर विश्वरूप देखने से नष्ट हुई स्मरण शक्ति। गोपी माता यशोदा वह आरोप्य बैठाकर आरोहम गोद में आत्मजम अपने पुत्र को प्रवृद्ध बढ़ा हुआ स्नेह स्नेह में कलिलम प्रभावित हृदया हृदय से आशीत हो गई यथा पूरा जैसे पहले थी। अनुवाद और तात्पर्य परम पूज्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण ने अपने मुंह के भीतर जिस विराट स्वरूप को दिखाया था योग माया के उस भ्रम को तुरंत ही भूलकर माता यशोदा ने अपने पुत्र को पूर्ववत अपनी गोद में ले लिया और अपने दिव्य बालक के प्रति उनके हृदय में और अधिक स्नेह उमड़ आया। तात्पर्य, माता यशोदा ने कृष्ण के मुंह के भीतर विराट रूप के दृश्य को योग माया की व्यवस्था माना, जो स्वप्न के समान थी। जिस प्रकार स्वप्न के बाद सारी बातें भूल जाती है, वैसे ही माता यशोदा तुरंत ही पूरी घटना भूल गई। जो ही स्नेह का प्राकृतिक भाव बढ़ा, त्यों ही उन्होंने निश्चय किया, अब इस घटना को भुलाए देती हूँ, यह मेरा पुत्र है और मैं इसका चुंबन करती हूँ। तो प्रसंग चल रहा है, भगवान ने मृद भक्षण ब्रजरज खाने की लीला की, दिखाया ब्रज भूमि से कितना प्रेम है भगवान का। सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी, गोपी शब्द माता यशोदा के लिए आया है। गोपी का अर्थ होता है जो अपने, गो का अर्थ होता है इंद्रिय, और पी आप सब जानते हैं, पी माने पीना। जो अपने समस्त इंद्रियों से भगवान के समस्त रसों का पान करती है, निरंतर जो अपने इंद्रियों से भगवत रस का आस्वादन करती है, वो गोपी। यही गोप का भी अर्थ है, जो इंद्रियों से पीते रहे वो गोप, जो समस्त इंद्रियों से भगवान के दिव्य रस का आस्वादन करे उसको, अथवा गोप जो गाय का पालन करते हैं, ऐसे गोपों की जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको गोपी कहते हैं। गाय का पालन करना ये ब्रज का, ब्रजवासियों का मुख्य धर्म था, तो ऐसे गोपी माता यशोदा भगवान के, कृष्ण के उस विराट स्वरूप का दर्शन किया। तो नष्ट स्मृति हो गई थी उनका, जो वास्तविक भाव था, स्मृति था कि मैं कृष्ण की माँ हूँ और कृष्ण हमारे पुत्र हैं, ये स्मृति नष्ट हो गया। और सद्य तत्काल जय शिष्यदाधा गिरधारी जू की, शिष्य जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, यथा पूरा शब्द इस श्लोक में आया है, जैसे पहले कृष्ण को अपना पुत्र मानती थी, उसी भाव में माता यशोदा पुनः आ गई। और जो स्मृति था कि इत्थम विदित तत्वायाम, उनको जो तत्व ज्ञान हो गया था, तत्व ज्ञान क्या है? अब तक माता यशोदा यही समझती थी कि कृष्ण हमारे पुत्र है, परंतु जब अपने पुत्र के मुख में विराट विश्व रूप का दर्शन किया तो मान गई कृष्णस्तु, ये हमारा पुत्र नहीं है। इसी तत्व का ज्ञान हुआ है, ये तो ब्रह्म है, ये भगवान है, परमात्मा है, ये ईश्वर है, हमारा पुत्र नहीं है। ये तत्व ज्ञान है। बदंती तत्तत्व विदस तत्वम यज ज्ञान मद्वयम, एक ही अद्वय तत्व को तत्व ज्ञानी लोग तीन नाम से पुकारते हैं, ब्रह्मा इति, परमात्मा इति और भगवान इति शब्द थे। एक ही तत्व को तत्व ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और भगवान। ये ब्रह्म परमात्मा और भगवान का जो रियलाइजेशन है, साक्षात्कार है, इसमें भगवत साक्षात्कार ही भगवान का पूर्ण साक्षात्कार है। शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है कि जैसे आप बहुत दूर से कोई पर्वत देखते हैं, पर्वत पर वृक्ष या पहाड़ या पत्थर या पेड़ दिखाई नहीं पड़ते, केवल नीला नीला कुछ बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। यही उस परब्रह्म का ब्रह्म साक्षात्कार है। ये पूर्ण साक्षात्कार नहीं, परंतु जैसे जैसे हम नजदीक जाते हैं उस पर्वत के पहाड़ के, तो दिखाई पड़ने लगता है कि थोड़ा थोड़ा कुछ उस पर पेड़ पौधे इत्यादि भी, ऊंचा नीचा भी है, कुछ है। ये परमात्मा साक्षात्कार है। और बिल्कुल नजदीक जाते हैं तो देखते हैं ये वृक्ष है, ये पुष्प है, ये पहाड़ है, ये झरना है, ये नदी है, और वास्तव में ये नीला कुछ नहीं था, ये तो एक एक अलग अलग वस्तु है। ये जो पर्वत का दर्शन है, इसको शास्त्रज्ञ लोग भगवत साक्षात्कार कहते हैं। पूर्ण साक्षात्कार तब होता है जब हम बिल्कुल नजदीक जाते हैं। बंधुओं, भगवान का ये साक्षात्कार भक्ति करने वाले भक्त को होता है। गीता में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जश्चास्मि तत्त्वतः। तत्व से जो भक्त हमारे नाम का जप करता है, हमें प्रणाम वंदनम करता है, श्रवणम करता है, वह भक्त भक्ति के द्वारा मुझे जान जाता है। कितना जानता है? यावन चास्मि, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जह, मैं जितना मैं हूं और मैं जो हूं उसको ठीक ठीक भक्त जान जाता है। भक्ति के प्रभाव से अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है भक्ति, और जब कोई भक्ति करता है तो ठीक ठीक भगवान कहते हैं वो जान जाता है। लेकिन माता यशोदा का यह जो तत्व ज्ञान हुआ भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके, यह ब्रज लीला के अनुरूप नहीं था, अनुकूल नहीं था, क्योंकि भगवान जहां जन्म लिए हैं। परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि आज तक ऐसा अवतार नहीं हुआ कि भगवान किसी के घर में अवतार लें और 5-10 मिनट भी माता पिता के पास नहीं रहे, भाग जाए, ऐसा अवतार हुआ आज तक? तो किस कारण से भगवान ने मथुरा में अपने माता पिता को छोड़ करके और वृंदावन में गोकुल में आ गए, क्या कारण? एक प्रश्न है भागवत, किस कारण से? तो आचार्य लोग उत्तर देते हैं कि माता पिता बहुत जेल में बंद थे, बहुत कष्ट में थे, भगवान ने सोचा गोकुल में जाऊंगा तो वहां बहुत स्नेह मिलेगा, दूध मिलेगा और सब कुछ मिलेगा, इसलिए भगवान गोकुल में आने का निर्णय किए। पिताजी को बताए कि यदि कंसात विभेषी त्वम, पिताजी आपको न मालूम हो तो समझ जाइए, यदि आपको कंस से कोई भय है तो तरही माम गोकुलम नय, तब आप हमको गोकुल पहुंचा दें। ऐसा भगवान ने उपदेश किया नंद महाराज को, वसुदेव जी को। गोकुल में आए हैं माता यशोदा का स्नेह लेने के लिए, माता यशोदा का प्रेम लेने के लिए, गोप ग्वालों को आनंदित करने के लिए, और इस तरह से सारे ब्रजवासियों को सुख प्रदान करने के लिए भगवान गोकुल में आए। गायों का समुदाय है, अद्भुत आनंद रस है ब्रज में, उस रस का आस्वादन करना चाहते हैं भगवान। किस रस का? चैतन्य चरितामृत में उन्होंने कहा है कि सब लोग हमको पिता है, पिता श्लोकस्य चराचरस्य, अर्जुन ने कहा आप सारे चर अचर जगत के पिता। अब ये सब भगवान के जो है अद्भुत गुण है। कोई एक व्यक्ति कह दे कि मैं पूरे बॉम्बे का बाप हूं तो लोग उसको मार डालेंगे, कोई कह सकता है? लेकिन भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं मैं पिता हूं, पिता महस्य जगतो माता धाता पिता मह, मैं ही पिता हूं। और जो बाप हो वो माँ नहीं बन सकता, लेकिन भगवान पिता भी हैं और माँ भी। पिता माँ नहीं बन सकता, माँ पिता नहीं बन सकती, लेकिन भगवान के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं? त्वमेव माता, और पिता बंधु त्वमेव, सखा विद्या द्रविड़ं, और उसके बाद कह देते हैं आप सर्वम। ऐसे पिता भी घबरा जाते हैं पिता बन करके, तब उनको पुत्र बनने की इच्छा होती है। चैतन्य चरितामृत में इस भाव का वर्णन है, भगवान वैकुंठ में पिता 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 ईश्वर जगन्नाथ सुनते सुनते घबरा जाते हैं, तब सोचते हैं कि कोई मेरा भी पिता बनता, मैं किसी का पुत्र बनता, वो मुझे डांटता मारता मेरी शिकायत करता मेरा ध्यान रखता तो आनंद आ जाता था। माता मोरे पुत्र भावे, कोई मेरा माँ बनता मुझे डांटता मूर्ख कहता है। भगवान जिनके श्वासों से सारों वेद निकले हैं, ऐसे भगवान भी डांटने का रस, बांधने का रस, अपने माता यशोदा के हृदय का रस, भाव रस प्राप्त करने के लिए ब्रज में आए हैं। बहुत डांट पड़ी उनको, शिकायत तो आप सबने सुना होगा, इसमें शिकायत का वर्णन है, कितनी शिकायत भगवान की हुई है। उस शिकायत को सुनने के लिए भगवान ब्रज में आए हैं। ये एक रस भगवान को प्राप्त करना था। शिकायत सुने हैं ना आप लोग, इसी अध्याय के तीसरे 31वें अध्याय में श्लोक में ब्रजवासी भगवान की शिकायत करते हैं, आप सब सुने हैं ना? नहीं सुने? सुना दूं? शिकायत सुनना है, भगवान की शिकायत सुननी चाहिए। भागवत के इसी अध्याय में शिकायत का वर्णन है। माता यशोदा भगवान की बहुत शिकायत सुनती थी, गोपी जन आती थी शिकायत करने के लिए, परंतु एक बार भी मैया यशोदा ने कृष्ण को डांटा नहीं। बहुत शिकायत। चलिए दो चार शिकायत का वर्णन कर लेते हैं, अभी प्रसंग आया तो। से सुना होगा आपने सीरियल में, बार बार कृष्ण को देखने के लिए किसी भी बहाने भगवान से मिलने के लिए परम सुंदर श्याम सुंदर से मिलने के लिए देखने के लिए उनकी बात को सुनने के लिए गोपीजन माता यशोदा के आंगन में खिरक में आती रहती थी। झुंड बना करके आती थी, कभी अकेले आती थी और आकर के शिकायत करती थी, मैया तुम्हें पता है ये है? कोई भी गलती करके और कृष्ण नंदलाला कहाँ जाते थे, गोपी के पहले ही पहुंच जाते थे और मैया यशोदा के पीठ पर उसका गर्दन पकड़ करके झूलने लगते थे और अथवा पीछे खड़े होकर के चुपचाप सुनते रहते थे। तो क्या सुनते थे और शिकायत करती थी, हाथ इशारे करके शिकायत करती थी, ये देखो जो साधु खड़ा है ना तुम्हारे पीठ के पीछे, ये बहुत उत्पात किया हमारे घर पे। मैया यशोदा कहती इतना छोटा लाला है क्या कर सकता है तुम्हारे, बोले अरे देखने में छोटा है, काम इसका इतना मोटा है, क्या करता है गोपी आखिर कुछ तो बताओ। मैया यशोदा ने पूछा बोलो क्या शिकायत है, बोले वत्सान मुंचति क्वचिद समये। मैया जब हमारी गायें घास चरकर दिन भर जब खिरक में आती हैं और बछड़े अलग बंधे रहते हैं और जैसे ही हमारे बच्चे या हम सब लोग घर के काम काज में थोड़ा सा भी व्यस्त होती हैं तो बिल्कुल ये ताकता देखता रहता है कि कैसे काम में व्यस्त हैं, उसी समय हमारे बछड़े को खोल देता है और बछड़े सारे दूध पी जाते हैं। मैया यशोदा ने कहा तो तुम लोग डांटती नहीं हो इसको, जब तुम्हारा बछड़ा खोल देता है दूध पी जाता है तो डांटा करो थोड़ा इसको कभी। गोपी ने कहा कि मैया हमने वो भी करके देख लिया, एक बार इसको डांटा और जितना ही क्रोध करके हम डांटते हैं उतना ही ठठा करके ये हंसने लगता है। क्रोध संजात हासम, अब आप किसी पर गुस्सा करो और वो खूब बिल्कुल जोर जोर से हंसने लगे तो आप कितना गुस्सा करोगे। बोले नहीं नहीं डांटा करो कुछ बोल दो मना करो इसको। बोले मना करती हैं तो क्या करता है, बोले जब मना करती हैं तो कहता है कि गोपी क्यों मुझे डांटती हो, मैं दूध थोड़े पी गया हूं। अरे तुम्हारा गाय और तुम्हारा बछड़ा, आखिर बछड़ा भी खोला तो तुम्हारे बछड़े ने ही दूध पिया ना, मैं थोड़े पी गया, तुम्हारा बछड़ा पुष्ट हुआ इसमें हमको क्या मिला, हमें मत डांटो। चलिए अभी निकाल ही लेते हैं। तब तक किसी गोपी ने कहा कि मैया ये केवल बछड़े ही नहीं खोलता है, हमारे घर में ये अकेले नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा गैंग है, ये चोरों का एक गैंग है, ये बहुत चोरी करता है। मैया यशोदा को बड़ी दुख होता था, माता स्नेह में होती है ना, स्नेहमयी जननी है, माता जब सुनती थी ये बहुत चोरी करता है आसपास में तो मैया को बड़ी चिंता होती थी। क्या चिंता होती थी, बुढ़ापे में एक तो एक लड़का हुआ और ऊपर से रंग भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, कैसा है काला, और ऊपर से यदि चोर हो जाए तो भविष्य में इसके शादी विवाह पर असर पड़ेगा। जब लोग सुनेंगे कि नंद बाबा जैसे सुंदर आनंद देने वाले ब्रज के ईश्वर का लड़का चोर है और दूसरे पढ़ने लिखने में भी इसका ध्यान नहीं है, अभी तो वो गायों के पीछे चलता रहता है, तो मैया को बड़ी चिंता होती थी, एक तो चोर ऊपर से काला और एक ही लड़का है, भगवान कैसे आगे चलेगा कुल खानदान ये पता नहीं। चोरी करता है, बोले हाँ चोरी करता है, घर में रखे हुए माखन को चुराता है ये, और अकेले नहीं चुराता है, और भी इसके 10-5 साथी हैं, साथ में जाते हैं और चुराता है। तो मैया यशोदा ने कहा, गोपियों एक काम करो, माखन को अभी छोटा सा लाला है तो थोड़ा ऊपर करके छीके को, छीका समझते ना, जिस रस्सी में का बना होता है, तो थोड़ा सा ऊपर रखो माखन को, जिससे इसको माखन प्राप्त न मिल न जाए, थोड़ा ऊपर रखो। एक गोपी ने कहा, मैया वो भी करके देख लिया। बोले तो क्या करता है? बोले पीठ कोलू खलाद दे, ये घर में जो लकड़ी या पीढ़े होते हैं ना, इन सबको ऊंचा ऊंचा करके वो उतार लेता है। तो माता यशोदा ने कहा कि थोड़ा और ऊपर रखो। तीसरी गोपी ने कहा, मैया वो भी करके देख लिया, बहुत ऊंचा रख के देखा। बोले तब क्या करता है? बोले ये किसी गोप सखा के कंधे पर चढ़ करके और उस मटकी को उतार लेता है। तो मैया यशोदा ने कहा कि गोपी एक काम करो, बिल्कुल छत से सटा करके रखो, गोप के ऊपर चढ़ने के बाद भी इसको न मिले, इतना ऊपर रखो। चौथी गोपी ने कहा, मैया वो भी उपाय करके देख लिया, तो क्या करता है? बोले घर में यदि लठिया या कुछ भी रखा रहता है ना, वो इतना एम से, इतना लक्ष्य से नीचे से मारता है कि माखन या दही फूट जाए, मटकी फूटे और तुरंत खाप बना करके और भाग जाता है। वैष्णव की परिक्रमा कर रही है। भ्रष्ट योगी है ना। हरे कृष्णा माता यशोदा ने कहा, गोपियों एक काम करो, उजाले घर में माखन मत रखो, अंधेरे घर में रख दो तो शायद तुम्हारा माखन बच जाए। एक गोपी ने कहा, मैया अंधेरे घर में भी रख के देख लिया, तो क्या करता है? बोलो चोरी करने में केवल इसी का हाथ नहीं है, चोरी कराने में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। इसके हाथों में जो अनेक प्रकार के मणिमय कंगन और गहना पहनाई हो, ये अंधेरे घर में जाता है तो प्रकाश हो जाता है। और एक तो इसके स्वयं त्रिविग्रह से, शरीर से ही इतना प्रकाश निकलता है कि जहां ये जाए प्रकाश पहले पहुंच जाता है। मैया यशोदा ने कहा कि लाली गोपियों एक काम करो, तुम लोग किसी दिन घर में माखन रखो ही मत, इसका आदत छूट जाएगा। एक गोपी ने कहा कि मैया ये भी करके देख लिया। बोले तब क्या करता है? बोले घर घर में जाकर के माखन खोजता है, और जब माखन नहीं मिले तो इतना बुरा बुरा श्राप देता है, कहता है इस घर में विपत्ति पड़ जाए, संकट पड़ जाए, भूखे मरे लोग दरिद्र हो जाए, जिस घर में मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है वो घर रहकर क्या करेगा? पता नहीं तुम्हारे लाला के मुंह में क्या ईश्वर कौन देवता का वास है, हम तो डर जाती हैं इसलिए रख देती हैं, खा लो भाई। और वास्तव में जिस घर में ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है तो श्राप तो देंगे ही। मांगते हैं गीता में, भाई खिलाओ, कुछ नहीं हो तो पत्रम। विक्षेप हो रहा है, उसको बाहर कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम उच्च स्वर से हरे कृष्णा। गोपियों ने शिकायत की, मैया किसी किसी दिन ये अकेले खाए तो कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा गैंग है इसके पास, खुद खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। और यहाँ तक कि माखन मैया यशोदा ने कहा चिंता की बात नहीं, हमारे घर में बहुत माखन है, लाली जितना माखन हमारा लाला खाता हो उसका 10 गुना लेके जाओ। किसी गोपी ने कहा कि केवल माखन खा जाए तो ठीक बात है, परंतु माखन खाता है और बंदरों को भी खिलाता है। अब भगवान खिलाते थे क्योंकि इसके पहले अवतार में जब आए थे तो बंदर ही, नर तो मिले नहीं है, मनुष्यों को कहाँ फुर्सत है, भगवान राम कृपा करके बानर को ही अपना मित्र बनाए थे। अब उस समय उनकी स्थिति ये थी, तापस वेश विशेष उदासी है, और 14 वर्ष राम बनवासी विशेष उदासी, पैर में एक चप्पल भी नहीं था, एक टाइम का नाश्ता भी अयोध्या से लेकर नहीं चले थे, दूसरे को क्या खिलाते। इसलिए बंदर लोग अपना खा करके हैं, जंगल से फल फूल खा करके और मिलिट्री फोर्स बन करके लंका से युद्ध किए थे। भगवान ने उस समय कहा था भाई इस समय तो कुछ नहीं दिया, परंतु अगली बार आऊंगा ना तो ये सारा पेमेंट पगार आपको दे दूंगा, जितना भी कर्ज है माइनस है वो सब पूरा करूंगा, अगले अवतार में मैं आऊंगा तो सब पूरा कर दूंगा। इसलिए भगवान खाते भी हैं और बंदरों को भी खिलाते हैं। मैया ने कहा कि जितने खाता है बंदरों को खिलाता है उससे कई गुना ले जाओ, मेरे पास माखन की कोई कमी नहीं। एक गोपी ने कहा कि केवल खाता होता तो ठीक ठाक, बंदरों को खिलाता वो भी ठीक ठाक, जो हमारे सास के जमाने की मटकी थी वो खाकर फोड़ दिया। पता नहीं कितने दिन से दूध दही खाया हुआ बिल्कुल रीठा हुआ मजबूत मटकी था उसको फोड़ दिया। मैया तो परेशान हो जाए सुन सुन करके इस प्रकार का शिकायत कंप्लेन, बोले एक काम करो मटकी भी ले जाओ जितना मटकी। तब गोपी कहने लगी कि मैया मटकी दे दोगी और सब चीज दे दोगी वो तो ठीक है, परंतु आदत तो बोलो सुधार ले, ये अपनी आदत सुधारे चोरी न करे। तो मैया यशोदा ने कहा एक काम करो, गोपी चोरी इसलिए करता है कि इसको मिलता नहीं, आराम से मिल जाए तो चोरी क्यों करेगा, इसलिए जैसे तुम्हारे घर में जाए उसी समय इसको कह दो कि लो खा लो। एक गोपी ने कहा मैया वो भी करके देख लिया। बोले तो क्या करता है, बोले ऐसे जब हम देती हैं कि लाला चोरी मत करे लो खा लो तो कहता है कि कोई हम हराम के खाने वाले नहीं। हम मेहनत की कमाई खाते हैं, पर क्या समझती हो हम हरामी हैं, हम मेहनत करते हैं खाते हैं। और किसी किसी दिन अंधेरे में या किसी कारण से माखन ताजा नहीं निकला तो खा पी करके और उस मटकी को फटक फोड़ देता है, और किसी दिन माखन घर में नहीं मिले तो आसपास में बच्चे सोए रहते हैं तो उनके कान को चैंटियां लेकर भाग जाता है, बच्चे रोने लगते हैं और ये भागता है। परेशान हो गई हूँ, ब्रज में लोग कहते हैं, गोपियां कहती हैं, अपनी गांव ले वो नंद रानी, हम कहूं अनंत बसेंगे जाए, अब ये नंद गांव में तुम रहो हम दूसरे जगह जाकर के बसेंगे, यहाँ अब हमारा रहना अच्छा नहीं, वहीं रहना है, बार बार देखना है, कृष्ण का दर्शन करना है। परंतु प्रेम में कहती हैं अब हम कहूं अनंत बसेंगे जाए, हम कहीं दूसरे जगह रहेंगे, तुम्हारे यहाँ अब नहीं रहेंगे। हद हो गया बिल्कुल अन्याय का। और क्या करता है, अब कितना कंप्लेन सुनाऊं आपको। कहती हैं कि जब जिस घर में माखन नहीं होता है, मटकी नहीं होता है, दूध दही नहीं होता है, तो जाता है अपने ग्वाल बालों के साथ और मल मूत्र त्याग करके उस घर को अशुद्ध करके भाग जाता है। कभी कभी कोई कोई गोपी प्रेमावेश में कहती थी अब हम गाली देंगे, ये भी एक उपाय है ना, यदि आदत नहीं सुधारा तो हम इसको श्राप देंगे गाली देंगे। तो मैया जसोदा कहती थी बुढ़ापे में एक लाला पाया है, बेटी गाली मत दीजो, मोह गरीबनी को जायो है, ये मेरे जैसे गरीब का एक लाला भगवान विधाता की इच्छा से मिली है, इसलिए गाली मत दो और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए सब ले जाओ। इतना शिकायत सुनने के बाद भी एक बार भी मां यशोदा हैं स्नेह कलिल हृदया, अपने पुत्र के प्रति कृष्ण के प्रति इतना स्नेह से आपूरित थी, स्नेह से हृदय भरा हुआ था, इतना शिकायत के बाद भी एक बार भी यशोदा मां ने कृष्ण को डांटा नहीं। आचार्य लोग कहते हैं क्यों नहीं डांटती थी, बच्चा बिगड़ रहा है, चिंता तो बहुत थी परंतु डांटती नहीं थी, यदि एक बार भी लाला को डांट दिया तो इसकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। डांट नहीं सकती, छड़ी उठाने की बात तो दूर रहे, और जब इतना शिकायत करके गोपियां और कृष्ण भगवान पीछे रहते थे और जब कहती थी क्यों रे लाला तुमने ऐसा चोरी किया खाया, तो भगवान कहते थे मैया जरा विचार करो हमारे घर में कोई कमी है क्या, इसके घर से कोई कम माखन है क्या कि हम दूसरे के घर में चुराने जाएंगे। तो मैया कहती थी मैं भी तो वही सोच रही हूँ, अपने घर में कोई कमी नहीं है, और बंधुओं जिस भगवान के लिए स्पेशल माखन की व्यवस्था थी, ऐसा शास्त्र और संत कहते हैं कि नंद बाबा के पास कितनी गाय थी, ऊंचे स्वर में बोलिए, 9 लाख, और उस 9 लाख में 2 लाख गाय हमेशा दूध देने वाली थी, 9 लाख जो थी ना वो सब दूध देती नहीं थी, 9 लाख में 2 लाख दूध देने वाली थी, और उस 2 लाख में भी एक गाय थी जिसे 100 गायों का दूध पिलाया जाता था, वो घास नहीं खाती थी, 100 गायों का दूध दूह करके एक गाय को पिलाया जाता था, और उस गाय के दूध से पद्म का दिव्य अद्भुत कमल का सुगंध निकलता था, उस गाय का नाम ही था पद्मगंधा गाय, और उस गाय के दूध को और उससे बने दही को और उसके माखन को भगवान खाते थे, परंतु इतनी सुंदर व्यवस्था जिसके घर में हो फिर भी वो दूसरे के घर में चोरी करने जाए। माता को बहुत चिंता रहती थी, चिंता बहुत थी परंतु करे क्या, कोई उपाय नहीं, स्नेह से आपूरित हृदय मां यशोदा एक बार भी कृष्ण को डांटा नहीं क्यों ऐसा करते हो। प्रवृद्ध प्र माने प्रकृष्ट रूप से, वृद्ध माने बढ़ा हुआ, इतना स्नेह उमड़ता था, इतना स्नेह बढ़ता था, मां यशोदा निरंतर कृष्ण के चिंतन में संलग्न। आगे वर्णन है अगले अध्याय में कि मां यशोदा ने विचार किया, इस प्रकार की शिकायत जब देखा सुना तो माता ने विचार किया आखिर इसके अंदर ये चोरी करने की का दोष क्यों आ गया, जब इतनी सुंदर व्यवस्था है तब क्यों दोष आया। तब एकदा गृहदासी सु यशोदा नंद गेहिनी, नंद बाबा की पत्नी मैया यशोदा रानी है, जिनके घर में लाखों लाखों दासियां, अब आप यही विचार कीजिए कि 9 लाख गाय का दूध दही बांधना, उनको खिलाना पिलाना, पानी पिलाना चराना, और दूध बैठाना, दही करना, जामन डालना, इनके लिए अनेक दासियां थी, परंतु मैया यशोदा ने स्नेह में सोचा कि लगता है ये दासी, ये जितनी भी नौकरानी है, ये शुद्ध रूप से माखन नहीं निकालती हैं, इसलिए हमारे पुत्र का बुद्धि ठीक नहीं है। जैसा खाओगे अन्न, बोले ये शुद्ध माखन निकालती तो हमारे बच्चे में ये चोरी करने का दोष नहीं आता। इसलिए कर्मांतर नियुक्तासु अन्य दासियों को अंतर कर्मासु नियुक्तासु दूसरे दूसरे काम में लगा करके, और यद्यपि रानी थी परंतु कृष्ण से इतना स्नेह है, हमारा लाला स्वस्थ हो, सुंदर हो, अच्छा विचार वाला हो, इसलिए निर्म मंथन स्वयं दधि, स्वयं दधि मंथन करने लगे। प्रातः काल का समय और दधि मंथन करती हैं। किस तरह से दधि मंथन करती हैं, कितना सुंदर श्रृंगार है, सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। छौ मंबास पृथुकटी तटे बिभ्रति शूत्र नद्धम, बहुत सुंदर रेशमी वस्त्र पहनी है। रेशमी वस्त्र शुद्ध होता है, वस्त्र की शुद्धि भी एक बहुत अच्छी चीज है। और अपने कमर में एक कमर कस करधनी लगाई है, अर्थात कृष्ण की सेवा में किसी भी प्रकार का आलस न हो जाए, हमारे लाला के सेवा में उसके माखन निकालने में किसी प्रकार के आलस तंद्रा इत्यादि न हो, प्रमाद न हो, किसी प्रकार की लापरवाही न हो, अशुद्धि न हो, इसलिए कमर कस करके तैयार है। और कानों में कुंडल, हाथों में कंगन, सब श्रृंगार करके, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, और इस प्रकार से वाणी से लाला के यश का वर्णन करती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यान यानी गीतानी तद बाल चरितानी च। मैया यशोदा का मन, कृष्ण जो तत्काल में यशोदा के सामने लीला किए हैं, उन लीलाओं का स्मरण करने में हृदय लगा है, और वाणी उसी लीलाओं को गाने में लगा है, हाथ कृष्ण की सेवा में लगा है, माखन निकालना है। इस तरह से मन, क्रम और वचन तीनों कृष्ण की सेवा में लगा है, और इस तरह से मैया स्नेह से कृष्ण का माखन निकालने लगी और कृष्ण का गुणगान करने लगी और उन लीलाओं का ही हृदय में स्मरण करने लगी, तो भगवान जग गए। मंगला आरती में कोई भक्त आनंद से स्नान आदि करके और शुद्ध रूप से भगवान के सामने आए तो भगवान सोए नहीं रह सकते। स्नेह से मैया बिल्कुल प्रभात प्रातः काल जब लाला के लिए माखन निकालने के लिए तैयार हुई तो तुरंत भगवान जगे, और माँ तो बिल्कुल आनंद में विभोर होकर के आंखें बंद करके गा रही है, कानों का कुंडल हिल रहा है, हाथ में कंगन, बिल्कुल कंगन करताल का काम करते हैं, और दधि में जो मंथानी चल रहा है ना, वो किसका काम करता है, मृदंग का काम करता है, मृदंग बज रहा है, करताल बज रहे हैं, और हाथों का कंगन करताल का काम करता है। हमारे आचार्य कहते हैं, हाथ के कंगन बड़े प्रसन्न हैं और अपने आप को धन्य मना रहे हैं कि मैं इतना सौभाग्यशाली माँ यशोदा के हाथ में पड़ा हूँ, जो हाथ केवल कृष्ण की सेवा में लगा है। कानों के कुंडल हिल रहे हैं, क्यों हिल रहे हैं, बोले सौभाग्य मना रहे हैं कि मैं धन्य हूँ ऐसे माँ यशोदा के कान में हूँ, जो कान केवल कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन सुन रहा है। इस तरह प्रवृद्ध स्नेह कलिलम माँ यशोदा कृष्ण के लिए माखन निकालना, प्रातः काल ही मैया को एक ही चिंता रहती थी, जगेगा तो भूख लगेगी, इसको भूख लगेगी, इसलिए जगने के पहले ही माखन तैयार होना चाहिए, इसको स्नेह कहते हैं। बंधु, स्नेह कभी मांगने की अपेक्षा नहीं करता है, स्नेह बहुत ऊंची चीज है। उसी तरह से जैसे हमें संसार में स्नेह है, अपने बच्चों के प्रति स्नेह है, तो बच्चा मांगता नहीं है कि माँ ये दो,
और ना तो स्नेह करने का कोई ट्रेनिंग सेंटर है। राधा गोविंद महाराज कहते हैं आज तक बहुत बहुत ट्रेनिंग सेंटर बना है, लेकिन एक माँ को ये सिखाया जाए कि अपने से अपने बच्चों से प्रेम करो, उसकी सेवा करो, इसका कहीं सेंटर है? ये महिला सेंटर है, ये पुरुष सेंटर है, ये इसका ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन कहीं इसका ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कि देखो ये तुम्हारा बच्चा है, इसकी सेवा करना, इससे प्रेम करना, इससे स्नेह करना, इसकी सेवा करना, इसका कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। जैसे सहज ही माँ बच्चे से स्नेह रखती है तो साधारण जब हाँ? ये बच्चा क्या है, छोटा सा भगवान का अंश, प्रभु के कितना छोटा, आत्मा का स्वरूप कैसा है शास्त्र में बताया गया, केशाग्र सत भागस्य सतधा कल्पितस्य च, एक केश के अग्र भाग को लीजिए, अगले भाग को, और उसको 100 टुकड़ा कीजिए, और उस 100 में से एक लीजिए, फिर उसको 100 कीजिए, उतना छोटा सा जीव है। और वो जीव कहाँ से है, ममई वंश, आनंदमय भगवान का अंश। जब उतना छोटा सा अंश इस शरीर में हड्डी मांस चमड़े में आकर प्रवेश कर जाता है तो माता पिता इतना स्नेह करते हैं, और जब पूर्ण सत्चित आनंद ही जिसका स्वरूप है, ऐसे भगवान माँ यशोदा के गोद में पड़े हैं, ऐसे माँ को कितना स्नेह है। पूर्ण आनंद ही जिस माँ यशोदा के गोद में खेल रहा है, ईश्वर ही भगवान ही माँ यशोदा के गेद गोद में पुत्र बन करके खेल रहा है, तो ऐसे माता के हृदय में कितना स्नेह है, है? एक जब छोटा सा हंस आया तो इतना स्नेह बढ़ता है, कितना योगक क्षेमं वहाम्यहम, क्या कर दूं इसे, क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, अनेक प्रकार के अनिष्ट में, इष्ट में भी अनिष्ट की आशंका बनती है, कहीं उसको ये न हो जाए, है ना? जहाँ स्नेह होता है तो भले वो ठीक ठीक जा रहा हो, यात्रा कर रहा हो, लेकिन बार बार ध्यान आती है। ट्रेन में विदा करने जाते हैं तो कहते हैं जाते ही फोन करना, पहले लोग कहते थे पत्र लिखना, अब क्या कहते हैं, हाँ, ट्रेन में बैठने के बाद मोबाइल, आराम से सीट मिल गया, अरे कंफर्म है तो मिलेगा ही। फिर भी स्नेह जो है वो एक एक क्षण की याद करता है। संसार का स्नेह जब इतना प्रबल तीव्र होता है, बंधुओं जब ठाकुर ही आनंदमय भगवान ही जिसका पुत्र बने हैं, आनंद ही जिसके गोद में पुत्र बन करके खेल रहा है, ऐसे माँ यशोदा प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदया, जिनके हृदय में बिल्कुल बढ़ा हुआ स्नेह ही अपार है, वो तो क्षण मात्र के लिए भगवान ने इस तरह का विश्व रूप दिखाया, और दिखा करके शायद पछताते होंगे कि क्यों दिखाया, अब ये तो विदित तत्व हो गई, हम भगवान है ऐसा मान ली, तो भगवान भी यदि मान ले कि ये तो ईश्वर है, तो वह शुद्ध प्रेम, वह प्रवृद्ध प्रेम नहीं होगा जो अपने पुत्र भाव में होता है। जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, उसके माता पिता ये मानने लगे कि ये राष्ट्रपति है, तो इतना स्नेह नहीं होगा, जितना स्नेह तब होगा जब ये मेरा पुत्र है। ऐश्वर्य स्नेह को शिथिल कर देता है, इसीलिए भगवान ब्रज में चाहे कोई भी लीला करे, कुछ भी करे, विश्व रूप दिखाए, चाहे कानी उंगली पर, कनिष्ठा उंगली पर 7 दिन गोवर्धन धारण करते रहे, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों को ये ज्ञान नहीं होता है कि ये भगवान है। कारण है कि जैसे ही भगवत भाव आएगा कि ये भगवान है, ईश्वर है, वहीं पर प्रेम शिथिल हो जाता है। आप देखते हैं ना, बहुत लोगों को ज्ञान है ये भगवान है, कितने लोग प्रेम करते हैं, कितने लोग प्रेम करते हैं भगवान से, जानते हैं ये ईश्वर है, महान है, परब्रह्म है, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भवान, सब है, परंतु प्रेम क्यों नहीं है? प्रेम कहाँ है? बोले प्रेम तो अपने पुत्र के प्रति है। इसलिए भगवान ये प्रेम की याचना के लिए, प्रेम प्राप्त करने की अभिलाषा के लिए पुत्र बनते हैं। भगवान की इच्छा होती है पुत्र बनूंगा तो लोग हमसे प्रेम करेंगे। माता मोरे पुत्र भावे करे न पालन, तुम्ही अतिहीन भावे करे लालन न पालन। इस रस का आस्वादन करने के लिए भगवान आते हैं। क्योंकि दशम स्कंद की कथा है इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वहां जाकर के भी भगवान इस रस का आस्वादन करके यहाँ आते हैं। सख्य भाव का आस्वादन करते हैं, भगवान है तो उनके कंधे पर कोई चढ़ेगा? लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान इस रस का आस्वादन करने आते हैं। सखा लोग कहते हैं सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण। सखा शुद्ध सख्य भाव में कहते हैं ए घोड़ा बनो। ब्रज में लीला होती है, आपस में खेल होता है, और जब खेल होता है तो एक पक्ष होता है और एक प्रतिपक्ष विपक्ष होता है, और दोनों तरफ से हार जीत की लीला होती है। आप जो खेले होंगे वो जानते हो, है ना? क्रिकेट हो, कबड्डी हो, या छुआछुई, जो भी हो उसमें दो पक्ष होता है। तो भगवान भी इस तरह से खेल खेलते हैं। एक बार खेल खेल रहे थे, उसी समय श्री दामा जी जीत गए, श्रीमती राधा रानी के भाई, और कृष्ण हार गए। हार गए तो श्री दामा जी ने कहा घोड़ा बनो। हारने वाले को, जीतने वाले को पीठ पर चढ़ाकर किसी खास स्थान पर ले जाना था। वो घोड़ा वाह्य वाहक का खेल था। श्री दामा जी ने कहा घोड़ा बनो। श्याम सुंदर ने कहा घोड़ा बनो, तुम जानते हो मैं कौन हूं? बोले कौन हो बताओ। बोले मैं नंद महाराज का पुत्र हूं, राजा का पुत्र हूं, और तुम घोड़ा बनाओगे? तो श्री रामा जी ने कहा चलो भैया, ये राजा के पुत्र हैं, इनको खेल से अलग कर दो। आप राजा हो ना, खेल में कोई स्वामी और कोई सेवक नहीं होता। खेल में सबके लिए नियम एक होता है, और आप राजा हैं, आपके लिए अलग नियम है, तो आप प्ले ग्राउंड से बाहर बैठिए। बोले नहीं जाएंगे, राजा के लड़के हैं। बोले बाहर बैठना पड़ेगा तुम्हें। और कान पकड़ करके श्री दामा जी ने बाहर कर दिया। अब तो सखाओं के बिना, भक्तों के बिना भगवान की भी कितनी शोभा होती है। अकेले बैठे हैं और उसी में देख रहे हैं कि बाकी बच्चे आनंद से खेल रहे हैं, मैं राजा हूं इसलिए अलग होना पड़ा। श्री दामा जी ने कहा खेलन में कोका को गुसैया। खेलने में, सूरदास जी ने पद लिखा है, खेलने में कौन स्वामी कौन सेवक, सबके लिए नियम एक होता है। और जब किनारे बैठ गए, खेल चालू हुआ, तो भगवान कहते हैं ए भाई अब चलो, अब ऐसा नहीं कहूंगा। बोले नहीं नहीं, अब तुम बाहर ही बैठो, अब नहीं आना, ऐसा कहा। अब लीला में तो दिखाते हैं, भगवान कहते हैं भाई देखो कोई तो मुझे मना लो। तो सिद्धामा जी ने कहा तुमको कोई नहीं मनाएगा, राजा हो ना, राजा को कौन मनाएगा, किनारे ही रहो। तब भगवान ने को बर्दाश्त नहीं हुआ, तब कहते हैं चलो अच्छा कोई नहीं मनाया तो मैं बिना मनाए मान गया। नहीं मनाओगे तो मैं मान गया, और अब सारे नियमों का पालन करूंगा। तो सिद्धामा जी ने कहा चलो घोड़ा बनो। तब भगवान घोड़ा बने हैं और उस स्थान पर ले गए हैं। इस रस का आस्वादन भगवान कहते हैं सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण। हमारे कंधे पर चढ़ जाता है और कहता है तुम ही कौन बड़ लोग, तुम ही आमिषम, तुम कौन बड़ा आदमी है, हम और तुम बराबर हैं, बराबर हो तब तो खेल में आओ, और नहीं तो नंद बाबा के लड़का हो, राजा के पुत्र हो तो किनारे रहो। तीसरा महाप्रभु कहते हैं, भगवान इस तरह से प्रिया यदि मान करे, करे भर्सन है वेद स्तुति हैते सही हरे मोर मन। भगवान इस प्रिया प्रियतम प्रिय भाव का प्रिय रस का स्वादन करने के लिए आते हैं, और इस रस से भगवान को पूर्ण संतुष्टि होती। जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ये भगवान भी थक जाते। भगवान को क्या चाहिए? प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदया, माता यशोदा का स्नेह चाहिए। स्नेह बंधु किसे कहते हैं? स्नेह का अर्थ होता है जो अपने आप पिघल करके है, पिघला करे, तरल से घी को तेल को स्नेह करते हैं। स्नेह का अर्थ होता है जो अपने आप बहता हुआ चला जाए। उसी तरह से ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम, ऐसा भाव जो सहज ही आपको राधा गिरधारी में ले आए, दर्शन में स्नेह, सेवा में स्नेह, और इस तरह से भगवान में जैसे पुत्र के स्नेह में व्यक्ति सारी सेवा करता है, यहाँ तक कि मल मूत्र भी माता धोती है फिर भी उसको आनंद आता है, उसी तरह से यहाँ यदि ठाकुर के प्रति, भगवान के प्रति स्नेह हो जाए तो सारी सेवाओं में आनंद आने लगता है। भार वही है जहाँ स्नेह नहीं। स्त्री को यदि अपने पति से प्रेम है तो वह जितना ही सेवा करती है उतना ही प्रसन्न रहती है, इसको स्नेह करती। माता यशोदा को थोड़े समय के लिए जो ज्ञान हुआ था कि ये तो भगवान है और मैं इस सृष्टि में कुछ नहीं हूं, ये स्मृति नष्ट हो गई, और पुनः जैसे ये मेरा लाला है, ये भूखा होगा, इसकी सुरक्षा करनी है और इस तरह से इसको सुरक्षा देना है, कब स्नान कराना है, ये सारी यथा पूरा जैसे पूर्व में जो भाव था तत्काल वो भाव माता यशोदा को पुनः प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हुआ? श्रृंगार आरती चालू हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, समय कितना हुआ? घड़ी नहीं दिखाई दे रही। हाँ, 9:20। बंधु इस स्नेह की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, भगवान में प्रेम प्राप्त करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद ने और सभी आचार्यों ने एक स्वर से कहा है, अभी हमें स्नेह नहीं है हृदय में, परंतु स्नेह तक के परम आनंद की सीढ़ी को प्राप्त करना चाहते हैं तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान के नाम का आश्रय लें, भगवान की लीला कथा का श्रवण करें और वैष्णव के भक्तों की सेवा करें तो हमारे हृदय में ये कृष्ण का प्रेम आ सकता है और कृष्ण के स्नेह का आस्वादन हम भी कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु गृहस्थों के लिए तीन ही धर्म बताए हैं। गृहस्थों को संदेश देते हुए कहते हैं, महाप्रभु से लोगों ने पूछा, सनातन गोस्वामी साहब बोले हमारा क्या धर्म है, हम क्या करें कि कृष्ण में स्नेह हो जाए? संसार से कितना भी प्रेम आप करो, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, अंत में वो यही कहते हैं कि क्या किया मेरे लिए। कितना भी प्रेम करो, कितना भी समर्पण करो, कुछ भी दे दो, अपना पूरा आयु झोंक दो उनकी सेवा में, लास्ट में यही कहते हैं क्या किया। और जिनसे आपने प्रेम किया, जिनके लिए सब कुछ किया, वो थोड़ा बड़ा होते ही दूसरे से प्रेम करते हैं, गलत है? और वो जिससे प्रेम करते हैं वो तीसरे से प्रेम करती है। राजा भर्तृहरि ने इस संबंध में बहुत सुंदर लिखा है, याम चिंतयाम सततम महिषा विरक्ता शाप्यन्यमिक्षति जनम। अब मुझे ठीक ठीक स्मरण नहीं आ रहा है, उनको किसी ने एक फूल दिया है अमृत पुष्प, तो उन्हें अपने रानी से प्रेम था, रानी को दिया, रानी को किसी कैप्टन से प्रेम था, वो फूल कैप्टन को दिया, उस कैप्टन को प्रेम था किसी बेसिया से तो बेसिया को दिया, और बेसिया को राजा से प्रेम था तो राजा को दे दिया। राजा इंक्वायरी करने लगा, ये फूल तो मैंने रानी को दिया था, उधर कहाँ से आया? तो धीरे धीरे पता चला कि ये संसार का स्वरूप है, हिंदी में जैसे सिक्स होता है छह, इसका मुंह इधर है और आगे छह है उसका मुंह उधर है, ऐसे ही ये संसार का स्नेह है। हम जिससे स्नेह करते हैं वो दूसरे से प्रेम करता है, और वो जिससे प्रेम करता है वो दूसरे से प्रेम करता है। तब भर्तृहरि को बहुत बड़ा वैराग्य हुआ और कहते हैं कि याम चिंतयामि सततम, निरंतर मैं जिसका चिंतन करता हूँ, जिससे प्रेम करता हूँ, महिषा विरक्ता, वो हमसे विरक्त है, और वो जिससे प्रेम करती है साप्यन्य मिक्षति जन्म, वो उससे विरक्त। लास्ट में कहते हैं धिक माम च, मेरे प्रेम को धिक्कार है, धिक्ताम च उसको धिक्कार है, धिक्तम च और उससे प्रेम करने वाले को धिक्कार है, और लास्ट में धिक मदनम च काम देव को धिक्कार है जो संसार में फंसा कर मर रहा है। इसलिए वास्तविक हमारे जीवन में स्नेह के विषय तो श्री राधा गिरधारी जी हैं, इनसे थोड़ा भी प्रेम किए तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। भगवान का एक स्वरूप है, छोटी से छोटी सेवा को भी बहुत बड़ा मानते हैं, और जो भक्त हो गया उसके बड़े से बड़े अपराध को भी भगवान राई के बराबर, सरसों के बराबर मानते हैं। इन सभी प्रेमों को प्राप्त करने के लिए महाप्रभु ने तीन संदेश दिया, नामे रुचि, भगवान के नाम में इंटरेस्ट आ जाए ऐसा प्रयास करो, जप करने से ऐसा होगा, जीवे दया और दूसरों के उपकार की भावना रखो, और वैष्णव सेवन, भक्तों की सेवा करो, भक्तों की सेवा जितना करोगे उतना ही भगवान में रुचि बढ़ेगी। इहा छाड़ी धर्म नाही सुन सनातन, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हे सनातन गोस्वामी, इन तीन के अलावा और कोई भी धर्म नहीं है। नाम में प्रेम हो जाए, जीवों के प्रति उपकार की भावना हो, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना हो, और वैष्णवों की सेवा, इहा छाड़ी, इसके अलावा सुखी होने का, आनंदित होने का और कोई मार्ग नहीं। नामे रुचि, नाम में रुचि कब आएगी? जब हम भगवान की लीला को सुनेंगे, भगवान के साथ अपने संबंध को सुनेंगे, उनके साथ ही हमारा संबंध है, उन्हीं को प्राप्त करना इस जीवन का लक्ष्य है। कथा श्रवण करेंगे, नाम में रुचि होगी, परोपकार करेंगे, प्रीचिंग करेंगे, और इस तरह से भक्तों की सेवा करेंगे, हमारा जीवन सुख। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद। समय हो गया। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो दोपहर को उमापति का क्लास है और शाम को भी राधा कृष्ण का कथा है।